धौला पुस्तक 12वीं लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तीर्णये जिने नमिहुम् वेयण महाहियारम् विविहियारम् परुवेमुहुम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना और वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के बाद जो चुली का है उसको हम देख रहे थे। दूसरी चुली का चल रही थी अपनी, वहां हमने देखा पहले अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा शुरू है और उसमें स्थान किसको कहते हैं अनुभाग का, उसकी बात हमने देखी थी। अब ये जो प्रदेशों की रचना कैसी होती है, पहले में पहले वर्गणा स्पर्धक वगैरह क्या है उसकी बात उन्होंने बता दी। अब कहते कि अनुभाग यानी अविभाग प्रतिच्छेद परमाणु के आधार से है, इसलिए परमाणु को भी अविभाग प्रतिच्छेद उपचार से कहकर वो प्रदेशों की यानी कितने प्रदेश पहली वर्गणा में कितने प्रदेश प्रदेश यानी परमाणु उनकी संख्या का यहाँ विधान चल रहा है। हाँ रिपीट हो रहे, तो हमने देखा था पहली वर्गणा में संख्या ज्यादा है क्योंकि द्रव्य विधान में भी हमने देखी थी ऐसी बात, यहाँ तो वर्गणाओं में है निषेकों में भी ऐसा होता है और यहाँ तो वर्गणा की बात भी चल रही है। तो पहली वर्गणा में सर्वाधिक परमाणु हो गए, दूसरे में थोड़े कम जिसको कहेंगे वर्गणा विशेष, वर्गणा विशेष कहो या चय कहो यानी दोनों में नंबर ऑफ परमाणु में कितना डिफरेंस है उसकी बात है। वो जो फिक्स वो चय है वो उतना ही उतना है, अवस्थित जिसको कहेंगे उतनी ही उतनी हानि होती चली जाती है और हानि होते 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 जब आधा हो जाता है वहां से दूसरी गुणहानि कहते हैं द्विगुणहानि यानी आधा होना, उसका नाम है द्विगुणहानि, उसको गुणहानि कहने की पद्धति है। फिर उसमें उसका चय भी कैसे निकालते हैं, तो जो देखो पहले में पहले पहली वर्गणा में प्रदेशों की संख्या कैसे निकालते हैं उसका आवार काल क्या है, आवार काल ने पूरे जो नंबर ऑफ परमाणु है टोटल उसको कौन सी संख्या से भाग देने पर प्रथम वर्गणा के परमाणुओं की संख्या आती है उसको कहते हैं डेढ़ गुणहानि से उसको भाग देना। जैसे यहाँ उन्होंने संदृष्टि बनाई, टोटल परमाणु है 3072 और उन्होंने माना हुआ वहां का जो यानी गुणहानि का प्रमाण 8, दो गुणहानि जिसको हम निषेक भागहार कहते हैं जिससे भाग देने पर उसकी संख्या आती है उसको 16 है, तो 3072 को 16 से भाग दिया तो 256 आ गए, तो पहली वर्गणा में परमाणु की संख्या 256 है। अब क्या करना है, निषेक भागहार से नहीं भाग देना, डेढ़ गुणहानि से, मैंने स्लिप ऑफ टंग हुआ, निषेक भागहार से तो वर्गणा को भाग देना है। फिर से मैं बताती हूँ, 3072 को 12 से भाग दिया जिसको हम कहेंगे डेढ़ गुणहानि, तो पहली वर्गणा का प्रमाण आया 256 आया। अब उसमें चय का प्रमाण निकालना है, प्रति वर्गणा कितनी हानि होती है उसके लिए क्या है, तो कहते निषेक भागहार से भाग दो। निषेक भागहार का अर्थ होता है वो पहली वर्गणा को निषेक भागहार है दो गुणहानि उससे भाग देंगे हम तो हमें चय का प्रमाण मिलता है। अब जो दूसरी वर्गणा है उसका भागहार कितना है तो निषेक भागहार में एक कम, तीसरी वर्गणा के लिए यानी 15 क्योंकि 240 को 15 से भाग देंगे तो हमें वो चय का प्रमाण आता है। इस तरह से हर एक निषेक की बात समझना। अब यहां हमने उसमें श्रेणी पर रूपनाय ने अनंत रूप निधान देखी, परम्परोप निधान ने गुनहानी गुनहानी होती वो भी देखी। अब यहाँ तो उसका अवहार काल यानी कौन सी संख्या से भाग देने पर वो संख्या आती है परमाणुओं की, उसको अवहार कहते हैं, उसके अपना यहाँ कथन चल रहा था। तो वो भी दो पद्धति से निकालते हैं, विरलन करके ये एक पद्धति है और क्षेत्र की अपेक्षा ये दूसरी पद्धति है। तो हमने पहले गुणहानि का विस्तार से कैसा निकालना प्रमाण वो देखी थी बात। अब यहाँ दूसरे गुणहानि में बात चलेगी। तो दूसरे गुणहानि में हम देख रहे थे पेज नंबर 107 पर आए थे हम, 106 पेज की बात हम देख के आगे बढ़ेंगे। देखो हम तृतीय गुणा ने तृतीय वर्गणा की बात चल रही थी, फिर से देखो ये बात हमने 105 नंबर से चालू हो गई थी। सबसे पहले हमने पहली वर्गणा में कितना होता है तो 256 उसका प्रमाण निकाला था, और उसको दूसरे जो वर्गणा है उसका प्रमाण निकालने के लिए दो पद्धति से बताया, विरलन से भी और क्षेत्र की अपेक्षा भी बताया। अभी तृतीय वर्गणा के प्रदेश प्रदेशों की संख्या निकालने का उनका विधान चल रहा है पेज नंबर 106 पर। देखो तीसरी लाइन वो पैराग्राफ फिर पढ़ते वहां पर, क्योंकि हम कल हमने विरलन के द्वारा देखा था और हमें क्षेत्र के द्वारा देखना था, ये विरलन वाली बात फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। तृतीय वर्गणा के कर्म प्रदेशों के प्रमाण से सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं। देखो पहली वर्गणा के प्रदेशों से कितने काल द्वारा अपहृत होते तो डेढ़ गुणहानि। अब दूसरी वर्गणा छोटी है तो उसका भागहार बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, तो 12 में कुछ अधिक हमने देखा था, साधिक हुआ था। अब तृतीय वर्गणा की बात चल रही है, उसमें और साधिक हो जाएगा, तो ये कैसे निकालते हैं? तो कहते साधिक एक अधिक डेढ़ गुणहानि स्थानांतर, 12 डेढ़ गुणहानि का प्रमाण 12 है, एक अधिक डेढ़ गुणहानि होती है 13 में भी कुछ साधिक हो जाता है, 13 पूर्णांक समथिंग है ना, इतने द्वारा काल द्वारा अवरुद्ध होते हैं। अभी उसको समझा रहे हैं। पूर्वोक्त विरलन में हमने क्या देखा था, पहले हमने 12 का यानी डेढ़ गुणहानि का विरलन किया और उसमें 3072 जो परमाणु की संख्या उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसको हम कहते हैं समखंड करके देने पर। विरलन करना है ने एक 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 हमने 12 बार लिखे, यानी 12 का विरलन हुआ, उसमें 3072 हमने समखंड करके दिए तो हर एक के ऊपर 256 आ गए, हर एक एक के ऊपर 256 आते हैं। अब इसके बाद क्या करना, देखो पूर्वोक्त विरलन में जो डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम वर्गणाएं स्थापित है, डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम वर्गणाएं स्थापित है, इसका अर्थ होता है प्रथम वर्गणाएं 256 और वो कितने बार है, 12 बार। यहां तक समझ में आई बात? तो हमें हमारे पास 256 12 बार है, उनमें से प्रत्येक में से तृतीय वर्गणा के प्रमाण को घटाने पर, देखो पहली वर्गणा है 256 उसमें 16 कम कर दो तो दूसरी वर्गणा, हाँ 240 उसमें से और 16 कम कर दो, हाँ 224 आ जाते हैं। तो 256 में से हम 224 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा वहां पर, दो बार 16 रह जाएगी ना, 32 रह जाएंगे, 32 यानी दो दो चय रहेगी, यानी 32 रहते हैं यहाँ, 32 रहते हैं यानी दो चय रहते हैं, यानी हमको 224 12 बार मिले और एक्स्ट्रा क्या मिला, 32 भी 12 बार मिले। 32 के बदले अगर हम 16 देखेंगे तो 16 24 बार मिले हमको, चय 24 बार मिला। अब यहाँ कैसे उन्होंने जिसको कहते हैं इक्वेशन या त्रैराशिक करना है, कैसा त्रैराशिक करना है, क्योंकि कितने बार अगर चय लेते हैं तो हमको 224 मिलता है। देखो पहली वर्गणा के लिए हम चय कितने बार लेते हैं, 16 बार, निषेक भागहार प्रमाण 16 बार, दूसरी वर्गणा के लिए 15 बार, तीसरी वर्गणा के लिए 14 बार। अगर 14 चय होते तो एक तृतीय वर्गणा आती है, हमारे पास चय कितने हैं, 32 12 બાર અને 16 24 બાર બરાબર તમારે પાસ 24 ચય હૈ તો ઉસમે તૃતીય વર્ગણા કિતની મિલેગી તો ક્યા કરેંગે 24 ડિવાઇડેડ બાય 14 અને એક પૂર્ણાંક આયા ઓર 10 14 આયા 10 14 કહો 5 સપ્તમાંશ કહો 12 કહીએ સપ્તમાંશ હે 5/7 અભી હમ યે જો એક્સ્ટ્રા મિલા હમકો યે કિસમે એડ કરના હે 12 મે તો 224 કે લિયે અવહાર કાલ કહો યા ભાગહાર કા પ્રમાણ ક્યા હોગા 13 પૂર્ણાંક 5 સપ્તમાંશ યે હમને કલ દેખા થા ગણિત કે દ્વારા અભી ઇસી કો ક્ષેત્ર કી અપેક્ષા દેખના હે હમકો વો હમ 107 નંબર કે પેજ પર યહાં સે પઢેંગે અપના વિષય યહાં સે શુરુ હોતા હે આજ કા અથવા ડેઢ ગુણાની માત્ર ક્ષેત્ર કો સ્થાપિત કર એ સંદૃષ્ટિ મૂલ મે દેખીએ કહેતે હૈ જો મૂલ મે ઉન્હોને સંદૃષ્ટિ બનાઈ હૈ ઉપર પુસ્તક મે તો ક્યા કરના હૈ એક ક્ષેત્ર હૈને પૂરે 372 હમકો ક્ષેત્ર કે દ્વારા લિખના હૈ તો હમ કૈસે કે હમ ઘર કી એરિયા કૈસે નાપતે હૈ એસે એસે 20 ફૂટ હૈ ઓર એસે 15 ફૂટ હૈ તો સ્ક્વેર ફૂટ તો ક્યા કરતે હૈ 20 ગુણા 15 કરતે હૈ તો ટોટલ એરિયા મિલતી હૈ અભી હમકો ક્યા કરના હૈ 256 યહાં લિખેંગે ઓર યહાં 12 લિખેંગે ઓર યે 256 હો ગયે યહાં પર 256 ઓર 12 એસા હમ ક્ષેત્ર બનાએંગે તો 256 ગુણા 12 હમકો 3072 ટોટલ મિલતે હૈ અબ ઉસમે સે ક્યા કરના હૈ યે 2 ચય નિકાલે હમને ઉસમે સે દેખો અભી યહાં ક્યા કહેતે હૈ અથવા ડેઢ ગુણાની માત્ર ક્ષેત્ર કો સ્થાપિત કર એક એક વર્ગણા વિશેષ કે વર્ગણા વિશેષ અને ચય વિષ્કંભ રૂપ એને ઉસકી ચૌડાઈ કિતની હૈ વિષ્કંભ એને ચૌડાઈ કિતની હૈ એક એક વર્ગણા વિશેષ અને 16 કે એક ફાલી નિકાલેંગે ઓર દૂસરે 16 કી દો દો ચય નિકાલના હૈ હર એક મે સે અગર ઇસ 256 મે સે 16 ઓર 16 હમ દો બાર નિકાલતે હૈ યાને 32 નિકાલતે હૈ તો યહાં કિતને રહે જાયગે 224 રહે જાયગે તો ઇસમે સે યે 16 વાલી દો ફાલિયા નિકાલી તો યહાં 224 હમકો મિલ જાયગે યાને 224 ઇન્ટુ 12 યે તો મિલ જાયગા યે ક્ષેત્ર ઓર યહાં ઓર એડિશન હૈ 16 ઇન્ટુ 12 કે 2 પીસ હૈ સમજ મે આતી ઇતને બાદ અબ ઉસકો દેખેંગે એક એક વર્ગણા વિશેષ કે વિષ્કંભ રૂપ ઓર ડેઢ ગુણાની આયામ રૂપ દો ફાલિયા ફાડકર યે દો ફાલિયા હમને ફાડે દો અંક કમ નિષેક ભાગહાર પ્રમાણ દો અંક કમ નિષેક ભાગહાર એને 16 - 2 = 14 તો દો અંક કમ નિષેક ભાગહાર એને 14 પ્રમાણ વર્ગણા વિશેષ વિષ્કંભ વાલે ક્યુકી હમકે અગર 14 કા 14 ચય હોતે વર્ગણા વિશેષ અને 14 ચયો મેં હમકો પૂરા એક મિલ જતા અંક યાની યહાં 12 કે બદલે યહાં 13 હો જાયગા યાની ક્યા કહેંગે હમ યે 16 ઓર 16 એસે હમને દેખે થે તો કહેતે કિતને કહેતે યાની હમકો યે કિતના મિલા 16 ઇન્ટુ 12 યાની 16 ઇન્ટુ 24 મિલે 16 ઇન્ટુ 24 મેં સે 16 ઇન્ટુ 14 લેના 24 में से 14 हमने ग्रहण किए तो हमें इस तरह से एक मिल जाएगा यहाँ पर एक मिला यहाँ 12 थे उसमें एक मिला समझ में आती ना बात डेढ़ गुण हानि में 8+4 होते उसमें पूरा एक अंक मिल गया हमको क्योंकि जो 24 है उसमें से हमने 14 यूज किए और बाकी कितने रह गए 10 चय बाकी रहे यानी वो पूरा निषेक तो नहीं पूरा एक नहीं मिलेगा 10-14 મિલ જાયગા તો કહે છે 2 અંક કમ નિષેક ભાગાર પ્રમાણ વર્ગણા વિશેષ વિષ્કંભ વાલે ઓર ડેઢ ગુણાની આયામ વાલે ક્ષેત્ર કો ઉપર રખને પર સાધિક 1 અધિક ડેઢ ગુણાની ભાગાર હોતા હૈ સાધિક 1 અધિક ડેઢ ગુણાની ની ઇવન 1.5 + 12 અને 13.5 હો જાતા હૈ જો હમને વિરલન કે દ્વારા નિકાલા વહી યે ક્ષેત્ર કે દ્વારા નિકાલ રહે અબ ચતુર્થ વર્ગણા કે પ્રમાણ સે अब चौथी वर्गणा की बात है, तो चय कितने बार निकलेगा? तीन बार निकलेगा। देखो अभी पढ़ेंगे हम इसको। एक बार उनके मेथड ख्याल में है तो कोई बहुत कुछ बहुत ज्यादा यहाँ कोई कैलकुलेशंस तो है ही नहीं है। अब चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर ये 224 में से और 16 कम करने हैं, या 256 में से हमको 3 चय कम करना है, 48 कम करना है। यानी 208 हो जाने वाले हैं। तो चतुर्थ वर्गणा का प्रमाण है 208, उससे सब द्रव्य को अपहृत करने पर वह साधिक 2 अंक अधिक 1.5 गुणहानी स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। इसका अर्थ है 1.5 गुणहानी का प्रमाण 12 और साधिक 2 यानी 14 पूर्णांक समथिंग होने वाला है। ख्याल में आती इनकी भाषा समझ लेना बस, और कुछ नहीं। अब उसको समझाएंगे। यथा 1.5 गुणहानी प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, हमने क्या कहा पहले में, पहले क्या किया था, 12 का विरलन किया था, ये 12 का विरलन किया, उसमें 3072 दे दिए, हर एक के माथे पर 256 आ गए, 256 256 256। अभी हमने उसमें से 48 माइनस करना है, यानी 3 चय कम करना है, चौथी वर्गणा है तो 3 बार चय घटेगा। हम उसको 48 में लिखेंगे या 3 चय के रूप में देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। उसमें से हमने 3 चय माइनस, यानी उसमें से कितने चाहिए हमको, 208 चाहिए, हर एक में से 208 निकाले तो नीचे 48 48 वहाँ रह गए, 48 रह गए, यानी 3 3 चय रह गए। तो प्रेरणा बेन टोटल चय कितने मिलेंगे हमको, देखो 12 बार 208 मिले और 12 बार 3 3 चय मिले, 48 48 12 बार मिले, 48 के बदले 3 चय कहो तो 3 चय 12 बार मिले तो टोटल कितने हुए मयंक भाई, 36, 36 चय हो गए हमारे पास, 36 चय रह जाएंगे, मिल जाएंगे हमको 36 चय। अब ये चौथी वर्गणा, तो कितने चयों से चौथी वर्गणा बनती है, देखो पहली वर्गणा 16 चयों से बनी, दूसरी वर्गणा 15 से बनी, तीसरी 14 से बनी, चौथी 13 से बनेगी। अभी हमारा त्रैराशिक जिसको कहेंगे, 13 चयों में एक चतुर्थ वर्गणा होती है, तो 36 चयों में कितने होंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएंगे, 36 डिवाइडेड बाय 13 होगा ना, 13 2 26 10 रह जाएंगे और 10 13 अंश रह जाएंगे। समझ में कैसी बात है, 36 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 26 10 रह गए, 10 13 अंश, यानी ये 2 पूर्णांक 10 13 अंश, ये 2 हमको किस में मिलाना है, 12 में, क्योंकि 36 चयों के द्वारा। देखो पहले 12 बार तो हमको 208 208 मिले ही थे, अब 48 48 भी हमको 12 बार मिले, 48 के बदले हमने 3 चय कहा, 3 चय 12 बार मिले तो हमको 36 चय मिले। 13 चयों में चतुर्थ वर्गणा होती है, तो 36 चयों में कितनी चतुर्थ वर्गणाएं होगी, तो 2 पूर्ण मिलेगी और 1 अधूरी मिलेगी, यही कह रहे हैं हम यहां से पढ़ेंगे। अभी देखो यथा से फिर पढ़ते बीच वाला पहले, 1.5 गुणानी प्रमाण यानी 12 बार प्रथम वर्गणाओं को चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, अपहृत करना यानी उसमें से माइनस करना, हर 256 में से 208 208 माइनस करेंगे तो प्रत्येक बार 3 3 वर्गणा विशेष शेष रहते हैं, 48 रहते हैं, 3 चय रह जाते हैं। इस प्रकार अपहृत करने पर, यानी 12 बार हमने वो अपहृत किया तो 12 बार हमको 3 3 चय मिले, 1.5 गुणानी मात्र चतुर्थ वर्गणाएं प्राप्त होती, यानी 12 बार 208 मिले और रहे कितना शेष, 36 चय रहे। हाँ फिगर डालना है ना, तो देखो यथा के बाद वहां से हम देखें, 1.5 गुणानी प्रमाण यानी 12 प्रथम वर्गणाओं को 256 को चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करना, 208 यानी 256 में से 208 माइनस करना है, तो प्रत्येक बार यानी जो 12 बार है ना हमारे पास, तो प्रत्येक बार तीन तीन वर्गणा विशेष शेष रहते हैं, यानी 16 गुणा 3 यानी 48 होते हैं। 48 चय, हम उसको वर्गणा विशेष को ही चय कह रहे हैं। इस प्रकार अपरत करने पर यानी 12 बार ऐसे हम माइनस करेंगे, सबसेक्शन करेंगे, तो डेढ़ गुणानी मात्र चतुर्थ वर्गणाएं प्राप्त होती है। डेढ़ गुणानी थे 12 बार, चतुर्थ वर्गणा यानी 208 मिल जाते हमको, और बाकी क्या बचेगा, क्योंकि 256 में से हमने हर बार 208 माइनस किए तो 12 बार हमको 48 मिलेंगे, यानी 12 बार तीन तीन चय मिलेंगे। फिर शेष रहे तिगुनी डेढ़ गुणानी मात्र वर्गणा विशेषों को, अब इसका अर्थ होता है, देखते हैं हम। देखो यह कितने मिले हमको, 12 बार तीन तीन 36 मिले, है ना, 36 मिले, तो कहते तिगुनी डेढ़ गुणानी मात्र वर्गणा विशेषों को, यानी डेढ़ गुणानी का प्रमाण है 12, तिगुनी डेढ़ गुणानी यानी 36, क्योंकि एक बार तीन मिले तो 12 बार मिले हमको, तो इतने वर्गणा विशेष यानी 36 वर्गणा विशेष यानी 36 चयों को चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, यानी उनमें से कितने ऐसे हमको चतुर्थ वर्गणाएं मिलेगी, तो कहते 13 में से एक मिलती है तो 36 में से कितने मिलेगी, तो कहते साधिक दो अंक प्राप्त होते हैं, यानी 36 को 13 से डिवाइड करेंगे तो दो पूर्णांक, फिर बच जाते हैं 10 बटे 13। पुनः यहाँ अब ये प्रश्न पूछ रहे थे, अन्य कितने वर्गणा विशेषों के होने पर तृतीय भागहार शलाका प्राप्त होती है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अब आप ही उत्तर देंगे इसका, ब्रह्म आप ट्राई करना। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ दो पूर्णांक 10 13 है, कितने चय पड़े कम, तो तीन आंकड़ा पूरा होता, अश्विन में आप बोलेंगे 10 कैसे कम पड़े, 10 13 तो आ गए, तीन कम पड़े, 13 13 होते तो 13 13 होता। देखो तो 36 तो है, 13 में एक बना तो तीन बनने के लिए 39 चाहिए, 33 41, तो तीन कम पड़े। अब तीन को कैसे बता रहे, देखो ये ऐसा वाक्य पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आता है, फिर से पढ़ते हैं इसको। पुनः यहाँ अन्य कितने वर्गणा विशेषण यानी एक्स्ट्रा, अन्य ने एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा कितनी चाहिए थी, तो अन्य कितने वर्गणा विशेषों के होने पर यानी और कितने चय होते तो तृतीय भागहार शलाका प्राप्त होती है, यानी भागहार शलाका एक्स्ट्रा तीन मिलती हमको, 12 तो थी उसमें हमने दो मिलाए, दो पूर्णांक 10 13, तो कहते पूरा अगर तीन प्रमाण किससे आता, तो ऐसा पूछने पर कहते हैं कि 9 अंक कम डेढ़ गुणानी, 9 अंक कम डेढ़ गुणानी यानी 12 - 9 3। वर्गणा विशेषों के होने पर तृतीय भागहार शलाका प्राप्त होती है, यहाँ तक समझ में। उसका ये वाक्य का अर्थ जरा अटपटा लगता है, वैसे तो कुछ उसमें कठिन बात नहीं है, हमें तीन चय कम पड़े, तीन चय और होते तो पूरे तीन अंक हम भागहार में मिला देते, परंतु यहाँ इतना नहीं है क्योंकि यहाँ 36 ही है, 39 तो है ही नहीं है, अतएव साधिक दो अंक मात्र ही प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप यानी एडिशन, किस में डाल रहे एडिशन, वो भागहार जो 12 256 के लिए 12 था, अभी 208 के लिए 12 पूर्णांक कुछ होता है, तो कितना डालना हमको, 12 में दो पूर्णांक 10 13 डाले हमने, इसको डेढ़ गुणानी में मिलाने पर साधिक दो अंक का अर्थ कितना हुआ, दो पूर्णांक 10 बटे 13, है ना। अभी इसको डेढ़ गुणानी में 12 मिलाने पर 12 प्लस दो पूर्णांक 10 13 तो 14 पूर्णांक 10 13 हो जाते हैं। इसी को कहते हैं साधिक दो अंक अधिक डेढ़ गुणानिया भागहार होता है, होती है, हुआ होता है करो, वह भी यह है। वो कौन कितना है वो बता रहे, अभी हमने प्रमाण क्या निकाला था, 14.10 उसको सॉल्व करें तो उतना ही आने वाला है। अभी इसने उन्होंने अलग से बताया यहाँ पर, ये 2.10 को ही सॉल्व करके 574/208 लिखा है। 12 में वो मिलाया तो 192/13 हो जाता है। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर चतुर्थ वर्गणा का प्रमाण आता है। वो 302 के बदले 3072 करो ब्रह्म, पुराने में करेक्शन है, नवे में क्या है, बराबर है क्या, 3072 चाहिए, वो 302 हुआ है। तो 3072 को 192/13 से भाग दिया, यानी उल्टा करके गुणा किया, 208 उत्तर आता है। यहाँ तक समझ में आई बात, हर वर्गणा के लिए ऐसा ही आगे आगे बढ़ना है। अथवा अभी क्षेत्र की अपेक्षा इसी को समझाएंगे वो। अभी हमने चतुर्थ वर्गणा के लिए कितनी निकाली थी प्रत्येक में से, तीन तीन फालियां निकाली थी। देखो, अथवा डेढ़ गुणानी प्रमाण क्षेत्र को स्थापित कर, ये डेढ़ गुणानी यहाँ 12 और ऐसा ही अपना 256, पहले ऐसा क्षेत्र हमने स्थापित किया, ये 12 और ये 256। अब कहते एक एक वर्गणा विशेष के विष्कम्भ रूप व डेढ़ गुणानी आयाम रूप तीन फालियां फाड़कर, क्या करना, ये 16-16 की तीन फालियां, यानी 48 हमने इसमें से निकाले तो ये 48 होगा और यहाँ 208 शेष रह जाएंगे। अभी ये 208 यहाँ से यहाँ 208 हो गया, हमने तीन फालियां निकाली उसमें 16-16 की। अब आगे देखते हैं, देखो यानी चय प्रमाण कितने, तीन फालियां ने 12 की एक फाली तो 36 मिले, 36 चय मिले हमको। तो तीन फालियां फाड़कर उन्हें तीन अंक कम निषेक भागहार मात्र, लक्ष्मी इसको कहना है ना, तीन अंक कम निषेक भागहार ने कितने हुए, 13, निषेक भागहार 16 है, 16-3, क्योंकि हमने देखा ना चतुर्थ जो वर्गणा है उसके लिए 13 चयन से बनता है वो। तीन अंक कम निषेक भागहार यानी 16-3, 13 होता है। तो कहते इतना विस्तृत और डेढ़ गुणानी आयत क्षेत्र के ऊपर रखने पर साधिक 2 अंक अधिक डेढ़ गुणानी भागहार होता है, यानी इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे साइड में तो यहाँ कितने के 2 अंक मिलेंगे, 12+2 हो जाएंगे, और दूसरा और आगे वाला है वो तो अधूरा रहेगा, यानी 2 तो ऐसे पूरे हो गए यहाँ तक, यानी वो क्या मिले, 208 और 208 के और एक एक मिल जाएगा, 2 निषेक मिले हमको, सॉरी 2 वर्गणाएं मिली और तीसरी वर्गणा पूरी नहीं मिली, 10-13 वाली मिली, तो 10-13 इस तरह से इतने रहेंगे, उसमें से हमने एडजस्ट किए तो इस तरह से क्षेत्र बन गया उसका, यानी ऊपर से निकाला और साइड में एडजस्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो शेष जानकर कहना चाहिए, इस प्रकार इस विधि से, यानी यही मेथड है अभी, प्रथम गुणहानि का 1 अधिक आधा भाग जाने तक ले जाना चाहिए। वैसे तो हम चतुर्थ वर्गणा तक आ ही है, 1 अधिक आधा भाग है ना, वो 5वीं वर्गणा तक आ गए हम, परंतु ये तो हमारी संदृष्टि है, छोटी छोटी संख्या है, वहां तो यथार्थ में जो गुणहानि का प्रमाण जो है अनंतों में होता है, तो 1 अधिक आधा गुणहानि तक चले जाना चाहिए। वहां की वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर वह 2 गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। क्या कहा, पहले डेढ़ गुणहानि था ना, वो 2 गुणहानि हो जाएगा, यानी भागहार कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो अभी हम देखते हैं उनकी अपेक्षा कैसे लिखते हैं। यथा अभी बता रहे, डेढ़ गुणहानि के विरलन अंक प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को, ये पहले जैसा विरलन हमारा 12 है, ये 12 का विरलन किया। फिर क्या करना, हर एक के ऊपर 256 है, डेढ़ गुणानी के विरलन अंक प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को वहां की वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, ये वहां की वर्गणा का जो प्रमाण होगा उसको उसमें से माइनस करना। हमारी वहां की एक आगे ने वो पांचवी वर्गणा है हमारी, 128 तो दूसरी गुणानी चालू हो जाएगी, हम पहले गुणानी के आधे में गए हैं, यानी पांचवा हमारे यहाँ तो पांचवी वर्गणा है, चार छह कम करेंगे हम तो। वहां की वर्गणा कितनी, अभी 208 थी हम, अब 208 में से और 16 कम कर दो, 192 हो जाएगा, तो माइनस वहां की वर्गणा ने 192, तो कितने शेष रह जाएंगे, 64 रहेंगे, क्योंकि चार छह मिलेंगे हमको, ये 64 यानी चार छह, समझ में आती है बात, ये बहुत आसान है यहां निकालना। देखो फिर से पढ़ती हूँ, डेढ़ गुणानी के विरलन अंक प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को, यानी 12 बार 256 थे, वहां की वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, वहां की वर्गणा का प्रमाण 192 यानी 256 माइनस 192 तो 64 आएगा उत्तर। अपहृत करने पर प्रत्येक एक के प्रति निषेक भागहार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेष अपहृत होते हैं। निषेक भागहार कितना है, 16, और उसका 3/4 है 12, तो यहां 12 छह अपहृत होते हैं, क्योंकि निषेक भागहार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों से वहां की वर्गणा उत्पन्न होती है। यानी अभी हम अभी तो चौथी वर्गणा के लिए हमने 13 चयों से वर्गणा उत्पन्न होती है, यहां 12 चयों से उत्पन्न होगी, समझ में आई बात। अभी हरेक में हमको कितने मिले, 256 में से 192 माइनस किए तो हमको 64 मिले, यानी चार चार चय मिले, यानी 192 यानी वो पांचवी वर्गणा हमको 12 बार मिली, और चार चार छह 12 बार मिले, तो टोटल छह कितने मिले प्रेरणा बेन, एक बार में चार छह मिले, 12 बार में चार चार मिले, 48 मिले, तो 48 छह मिले। पांचवी वर्गणा है तो 12 छयों से एक पांचवी वर्गणा होती है पंचम, 48 छयों से कितनी मिलेगी, अभी फुल फिगर आ जाएगी ना, चार मिलेंगे, तो वहां पहले हमारे 192 हमको 12 बार मिले ही थे, और जो रहेगे चय उसमें से चार अंक और मिले, 12 और 4 16 हो जाएगा, समझ में आई बात। देखो फिर से इसको पढ़ते, यथा डेढ़ गुणानी के विरलन अंक प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को वहां की वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, यानी 256 में से 192 माइनस किए, प्रत्येक एक के प्रति निषेक भागहार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेष अपहृत होते हैं, यानी वहां 12 वहां चार चार छह रह जाते हैं, या चार छह रहते हैं, या वो 192 में जो है ना वो 12 छह कहो या 192 कहो, एक ही बात है, तो उसी को उन्होंने 3/4 भाग प्रमाण कहा, क्योंकि निषेक भागहार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों से, यानी 16 × 12 वहां की वर्गणा उत्पन्न होती, 192 उत्पन्न होते हैं। तथा जो प्रत्येक अंक के प्रति निषेक भागहार के 1/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेष शेष रहते हैं, हमने देखा था ना 192 हमको 12 बार मिले और निषेक भागहार का 1/4 भाग प्रमाण, निषेक भागहार 16 है, उसका 4 भाग यानी 4, वर्गणा विशेष शेष रहते हैं, उन्हें भी उसके प्रमाण से करते हैं। यथा निषेक भागार के तीन चतुर्थ भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों का, यदि डेढ़ गुणानी भागार होता है तो निषेक भागार के चतुर्थ भाग मात्र वर्गणा विशेषों का कितना भाग होवार होगा। इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर गुणहानी का अर्ध भाग आता है, यानी हमारे संख्या में वो चार आता है। उनको ये चार संख्या नहीं बतानी, उनको गुणहानी की भाषा में बताना है, इसलिए हमको ये अटपटा लगता है। फिर से इसको कहते यथा निषेक भागार का तीन चतुर्थ भाग यानी कितनी है, बारह। वर्गणा विशेष यानी बारह चय, बारह चयों का यदि डेढ़, निषेक भागार 16 है, उसका तीन चतुर्थांश ने 12 है, यानी उतनी वर्गणा विशेषों का यदि डेढ़ गुणानी भागार होता है तो निषेक भागार के चतुर्थ भाग मात्र हमारी, देखो हमारे ऐसा लेना है कि 12 चयों से हमको ये पंचम वर्गणा मिलती है, तो निषेक भागार के चतुर्थ भाग मात्र वर्गणा विशेषों का, निषेक भागार का चतुर्थ भाग है ना चार, चार चय कितना भागार होगा। इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशि को अपवर्तित प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर गुणहानि का अर्ध भाग आता है, यानी चार आता है। उसको डेढ़ गुणहानि में मिलाने पर दो गुणहानियां भागार होती है। हमने ऐसा देखा ना, 12 चयों से एक वर्गणा होती है तो 48 चयों से चार होगी। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर यानी 3072 को 16 से भाग देते तो 192 वहां की वर्गणा का प्रमाण आता है। संदृष्टि में उसका प्रमाण यह 192। अभी इसी को क्षेत्र से समझाएंगे फिर दोबारा, एक तो विरलन से समझाते हैं और एक क्षेत्र के द्वारा समझाते हैं। अब क्षेत्र से फिर देखते हैं। अब देखो, अथवा डेढ़ गुणहानी प्रमाण क्षेत्र को स्थापित कर चार फालिया करके, इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई? हाँ ना, 16-16 की चार नहीं करना, किसकी चार करना? दो सौ छप्पन की चार करना, 256 की चार करना, 256 बटे चार कितना आता है 64, तो 64-64 की एक एक वैल्यू मिली। चौसठ में 16 की चार मिल जाती है हमको, 16-16 की छोटी नहीं, अभी डायरेक्ट हमने, हमको यहाँ 256 को हम इस तरह से बांटेंगे। अभी 64 की निकालनी है ना हमको, 64 माइनस करेंगे, ये पूरी फाली यहां से निकालेंगे, 64 त्रिक कितने रह जाएंगे, 192 रह जाएंगे, और 64 गुना 12 हमको मिल जाएगा। देखो फिर से सुनो इसको, डेढ़ गुणानी प्रमाण क्षेत्र को स्थापित किया, यानी ये 256 और 12 ऐसा हमने स्थापित किया, ये डेढ़ गुणानी क्षेत्र हुआ, क्योंकि एक बाजू 256 दूसरी बाजू डेढ़ गुणानी। हाँ, अभी क्या है, उसकी चार फालियां करके इनमें से एक एक फाली का विष्कम्भ, विष्कम्भ ने चौड़ाई कितनी चौड़ाई हुई, निषेक भागार के चतुर्थ भाग प्रमाण होता है, 16 का चौथा भाग ने निषेक भागार का चतुर्थ चार, परंतु आयाम डेढ़ गुणानी प्रमाण होता है। निषेक भागार का चतुर्थ ने चार 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 उसमें चय आ गए, 64 में 16-16 के चार चय आ गए, समझ में आई बात? चार चय कम करो या 256 का चौथा भाग कम करो, एक ही बात होने वाली। इनमें से तीन फालियों को छोड़कर, यानी ये 64 वाली तीन फालियां छोड़ दो, और ये वाली जो है यहाँ की 64x12 वाली फाली ग्रहण करो, तो तीन फालियों को छोड़कर शेष एक फाली को ग्रहण कर और आयाम की ओर से तीन खंड करके आगमानुसार शेष तीन फालियों में जोड़ देने पर। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी ये बात यहां से 64 है और ऐसे 12 है, 64 और 12 है, 64 तीन बार लेते हैं तो हमको एक पूरा ये मिल जाता है निशेक, 192 मिल जाएंगे। तो अभी क्या करना है, ये 12 में इसके तीन टुकड़े करना है। अब ये कैसा हुआ, ये 4 और ये 64, ये 4 ये 64, तो ये 4 हमने इधर लिखा और ये 64 ऐसा एडजस्ट किया, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये एक इधर रखा, ये दूसरा इधर रखा, तीसरा इधर रखा, ये ऊपर से निकाला तीन टुकड़े करके और यहाँ एडजस्ट किया, तो यहाँ हमको 64 64 वाले तीन पीसेस मिले और पूरा एक हमको वर्गणा मिली और ये यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो गए, 12 थे और ये 4 मिल गए तो 16 हो गया यहाँ का भागा, यानी 192 के लिए 16 भागा हो गया। समझ में आई इतनी बात। इस प्रकार समस्त प्रथम गुणहानि जाने पर तीन गुणहानियां भागार होती है। देखो हम जहां पहुंचे थे वहां कितनी हो गई, 2 गुणहानियां हुई थी, पहला कितना था, डेढ़ गुणहानि था, आधे आगे गए तो आधी गुणहानि बढ़ा, इन्हें 1.5 से 2 हुआ और रिमेनिंग आधे जाएंगे और आधा बढ़ेगा, नहीं तीन गुणहानियां हो जाती है, तीन गुणहानियां हो जाती है, एक मिला ना उसमें, देखो देखो ऐसा ही है उसका अर्थ, चय का प्रमाण तो बाद में बनेगा, यहाँ तो अभी हम पहली गुणहानी में है, क्योंकि दूसरी गुणहानी में जब पहुंचते हैं तो तीन गुणहानियां हो जाता है। देखो क्या कहा, फिर से पढ़ दे इसको। इस प्रकार समस्त प्रथम गुणहानी जाने पर, प्रथम गुणहानी पूरी गई, गुणहानी पूरी गई उसका अर्थ है अभी कहां पर पहुंचे, 128 तक पहुंचे, तो आधा निकाला। देखो क्षेत्र में समझना बहुत आसान है, ये 256 और ऐसा 100, ये 12 था और ये 256 था, अभी ऐसा आधा करो, ये 12 और आधा इधर और फिट करो यहाँ, तो 12 और 12 24 हो जाएगा, तो डेढ़ गुणहानी हो जाए, तीन गुणहानी हो जाएगी। पहले हमने क्या था, 1/3 है उसको इस तरह से पीस करके बताया था, यहाँ तीन गुणहानियाँ हो जाती हैं। तो यथा चूंकि एक गुणहानि आगे गए हैं अतः एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर, अभी एक अंक का दुगुना किया तो 2 हो गए, परस्पर गुणा करने के लिए कुछ नहीं रहा, 2 ही रह गया, जो राशि उत्पन्न हो उससे डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर, एक गुणहानि आगे गए हैं तो हमें 2 से गुणा करेंगे, किसको, वो डेढ़ गुणहानि को, तीन गुणहानियां भागार होती है क्योंकि प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों से, यानी प्रथम वर्गणा में नंबर ऑफ परमाणु कितने थे, तो 256 थे, तो 256 से द्वितीय गुणहानि की प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेश आधे यानी 128 हो जाते हैं। 110 पेज पर आना। संदृष्टि में तीन गुणहानि रूप भागहार यह है, डेढ़ गुणहानि 12 है तो तीन गुणहानियां 24 होते, क्योंकि एक गुणहानि का प्रमाण हम 8 मान लिया, अथवा डेढ़ गुणहानि क्षेत्र को स्थापित कर, हमने पहले अभी अभी देख लिया है ना, 256 के आधे में फाड़ देना उसको और उसके आगे वो जोड़ देना, तो 256 इंटू 12 था, तो कैसे मिले 128 × 12 तो 12 × 12 = 24 हो गए। अभी हमने बताया नक्षत्र को, पहले ऐसा जो था पीस उसको हमने आधे से फाड़ कर फिर उसके आगे उसको चिपका दिया। देखो अथवा ये बात फिर पढ़ती हूँ, डेढ़ गुणानी क्षेत्र को स्थापित कर। उन्होंने संदृष्टियां बताई परंतु वो क्लियर नहीं है, है ना, ये हम अभी हमने देखी है। हाँ, अन्योन्य व्यस्त राशि प्रमाण फालिया करके, हमारी अन्योन्य व्यस्त राशि दो ही है क्योंकि एक ही गुणानी हम आगे गए, तो उतनी फालिया करके। अगर हम दो गुणानी आगे जाते तो क्या होता, 2 × 2 = 4 तो 4 हो जाती है, तो उसमें 3 गुणानी इसके बदले 6 गुणानी हो जाती। तो अन्य व्यस्त राशि प्रमाण फालिया करके उन्होंने यूनिवर्सल रूल बताया, कितनी गुणानी हम आगे जाते हैं, समझ में। तो उसके पहले हमको अन्योन्य व्यस्त राशि निकालना। अन्योन्य व्यस्त राशि का अर्थ क्या होता है, जितनी गुणानियां आगे गए हैं उतनी बार एक लिखो और हर एक एक को डबल करो, दो दो करो, यानी 3 गुणानियां आगे गए हैं तो 3 × 2 लिखो और आपस में गुणा करो, तो 2 × 2 × 2 = 8 हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अन्योन्य व्यस्त राशि। तो उससे 1.5 गुणानी को गुणा करना तो 1.5 × 8 हो जाते हैं, 1.5 × 3/8 यानी 12 हो जाती है, यानी 3 गुणानी आगे जाते हैं हम, तो वहां का प्रमाण भागहार कितना हो जाएगा, 12 गुणानी। पहले हमने 1.5 गुणानी, 1.5 × 3, 3 × 6, 6 × 12, क्योंकि प्रमाण आधा आधा होता है तो भागहार डबल डबल हो जाता है, गुणानी गुणानी के प्रति भागहार डबल होता है, इतना ही कहना है। देखो इस विधि से क्षेत्र प्ररूपणा और त्रैराशिक क्रम को जानकर, दोनों ही पद्धति से जानकर जघन्य अनुभाग स्थान की अंतिम वर्गणा तक ले जाना चाहिए, यानी 256 से चलते चलते हम 9 तक पहुंचना चाहिए, कहना चाहते। इस प्रकार अवहार प्ररूपणा समाप्त हुई, यानी वहां का हरेक का भागहार कितना होता है उसको निकाल देना। जैसी अवहार की प्ररूपणा की गई है वैसी ही भागा भाग की भी प्ररूपणा है। भागा भाग में क्या कहेंगे, कितने भाग प्रमाण है, कितने भाग प्रमाण है, तो उसको 1.5 गुणानी का भाग देके जितने भाग प्रमाण है ऐसा हम कहेंगे। क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। अब अल्पभूतों का कथन करते हैं। अल्पभूतों में कैसे लेना है हमको, हमने जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक वर्गणा स्थापित की है, 256 से लेकर हमने 9 तक की वर्गणा स्थापित की थी। हाँ, तो उसमें देख रहे, उत्कृष्ट वर्गणा के कर्म प्रदेश सबसे स्तोक है, जो हमने 9 माने हुए हैं 2 नंबर पर, उनसे जघन्य वर्गणा में कर्म प्रदेश अनंत गुणे हैं, ये 256 हो गए। गुणकार क्या है, तो कहते अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण कुछ कम अन्योन्य राशि गुणकार है। देखो कुछ कम अन्योन्य राशि का अर्थ हम देख लेते हैं। अगर हम गुणहानि गुणहानि प्रति अगर हम देखते तो 256 से 128 तक यहाँ तो दूसरी गुणहानि चालू हो गई, 64 से तीसरी चालू हो गई, 32 से चौथी चालू हो गई, 16 से पांचवी चालू हो गई। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म प्रदेश की बात करनी है ना, तो इससे 16 से अगर हमको 256 कितने गुना है ऐसा निकालना है, तो यहाँ से अगर हम 1, 2, 3, 4 ही गुणानियां हुई, तो 4 × 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करो, तो 2 × 2 × 2 × 2 = 16 आता है, तो 16 के साथ कंपेयर करना होता तो ये 16 गुना है। अब हम 9 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अभी 16 के बदले 8 अगर होता, हमारी अंतिम वर्गणा 9 है क्योंकि 8 से तो और आगे की गुणानी चालू होती है, तो अगर 8 से कंपेयर करते तो ये 8 से अगर गिनते तो कितने 5 गुणानी होती है, तो 32 गुना हो जाता, 8 की अपेक्षा 32 गुना, यानी अन्योन्य व्यस्त राशि 32 है, 32 गुना होता है, परंतु हम कंपेयर कर रहे हैं 9 से, हाँ, इसलिए कुछ कम अन्योन्य वृश्चिक राशि होंगे, इतने गुना हुआ, क्योंकि 256 को 8 से भाग देते तो 32 आते, 9 से भाग देते तो कुछ कम आ जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो कहते कुछ कम गुणकार्य हुआ अन्योन्य वृश्चिक राशि। अभी तीन पॉइंट, उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणाओं में कर्म प्रदेश अनंत गुण है। टोटल नंबर हमने 3072 माने हैं, उसमें जघन्य वर्गणा की बात है 256। देखो वर्गणा जघन्य है, परमाणु नंबर ज्यादा है, तो जघन्य वर्गणा में 256 थे, उत्कृष्ट में 9 थे, 256 और 9 हाँ, कितने हुए? हाँ, तो 3072 में से 265 कम कर गए तो 2807 आते हैं। इसी को कहते हैं अजघन्य और अनुत्कृष्ट, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों को छोड़कर बाकी शेष। गुणकार क्या है? कुछ कम डेढ़ गुणानिया गुणकार है, क्योंकि हमने दोनों को कम करके अगर 372 के साथ कंपेयर करते तो डेढ़ गुणानी गुणकार होता, अब ये संख्या कम है इसलिए कुछ कम कह दिया। चार नंबर, उनसे अप्रथम कर्म वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है। अप्रथम मैंने 9 मिलाए, केवल जघन्य को छोड़ा, यानी 2807 थे उसमें 9 मिला दिए, 2816 हो गए। विशेष का प्रमाण कितना है? तो उत्कृष्ट वर्गणा के बराबर है, हमने 9 मिला है तो उत्कृष्ट वर्गणा के जो परमाणु है उसको मिला दिया था। पांच नंबर पर, उनसे अनुत्कृष्ट वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है। अनुत्कृष्ट कहने से उत्कृष्ट को छोड़ो और जघन्य को ग्रहण करो, तो 9 निकाल दो तो जो 2807 थे उसमें 256 मिला दो, या टोटल 3072 में से 9 निकाल लो ना, ज्यादा आसान होगा। तो कहते अनुत्कृष्ट में विशेष अधिक है, 3063 होता है। विशेष कितना है? उत्कृष्ट वर्गणा के कर्म प्रदेशों से हीन प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों के बराबर है, यानी 256 मिलाना और 9 माइनस करना। छह नंबर, उनसे सब वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है, 3072। विशेष कितना है? उत्कृष्ट वर्गणा के कर्म प्रदेशों के बराबर है, यानी हमने केवल उत्कृष्ट को छोड़ा था, अब उसको भी पकड़ना। ये ऐसे ही अल्पभूत हमने बहुत बार देखे थे, उत्कृष्ट जघन्य और बीच वाले, इसके कंपैरिजन। अब आते 111 पेज पर। इसी प्रकार अब ये सब हमने वर्णन देखा था, वो किसका था याद है? जघन्य स्थान का अनुभाग स्थान, जघन्य अनुभाग स्थान। स्थान किसको कहे थे? अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद होता है उसको कहा था, उसमें ऐसी सब उसी में अंतर्गत ये सब आ गया। अब कहते इसी प्रकार द्विचरमादि यानी अंत से दूसरा, उत्कृष्ट की बात बताएंगे, द्विचरमादि अनुभाग बंध स्थानों का भी कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि जघन्य बंध स्थान से द्वितीय बंध स्थान अनंत गुणा है, उससे तृतीय बंध स्थान अनंत गुणा है। इस प्रकार अपूर्व करण संयत तक ले जाना चाहिए। अश्विन भी इसका अर्थ बताओ। किसकी बात चल रही है? किसमें होगा जघन्य स्थान? हाँ बताओ। सात सात की बात कहाँ है? ज्ञानावरण का दसवें के अंत में लिया। देखो जघन्य स्थान से अजघन्य स्थान की कंपैरिजन हो रही है।
हाँ, तो या अपूर्व कर्म
इसीलिए मैंने आपको प्रश्न पूछा। देखो देखो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ जघन्य स्थान की बात है, ये दसवें गुणस्थान का अंतिम, ये दसवां गुणस्थान का अंतिम समय। यहाँ जो बंध होता है वो जघन्य है, वो जघन्य बंध स्थान है। उसके एक पूर्व समय में कितना होगा, वो बंध उससे अनंत गुणा था। अन्यत्र बंधों में अगर हम नीचे से अगर एकेंद्रिय की बात करेंगे तो अनंत भाग वृद्धि वाले हो गए। समझ में आती ना, ये कहाँ की बात चल रही है, क्षपकों की अंत से। और उसे एक समय, क्योंकि वहां नीचे से चढ़ते समय अनंत गुणा हानि रूप से बंध स्थान होते हैं। बंध और सत्व भी अनंत गुणाहीन होते चले जाते हैं। अनुसमयापवर्तन तो सत्ता में हो रहा है, बंधने में भी अनंत गुणाहीन हो रहा है। अब कहते कि एक समय पूर्व अनंत गुणा उल्टा ले रहे, यहां सबसे जघन्य है ये पहला स्थान जघन्य वाला, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। एक एक समय में एक एक स्थान दे दो, अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा वाला होता है। कहां तक, अपूर्वकरण के अपूर्वकरण संयत तक। समझ में आई बात, इसका अर्थ समझ में आया, क्योंकि श्रेणी में अनंत गुणा की बात होती है। अब देखते उसके आगे के अनुभाग बंध स्थान, उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान तक। ये उत्कृष्ट अनुभाग संगी पंचेन्द्रिय मिथ्या दृष्टि संकलेश परिमाण वो सब लगा लो तो वहां तक छह प्रकार की वृद्धि से जाते हैं। ख्याल में ये बात, यानी वो तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, वो सब षट स्थान लगेंगी वहां पर। केवल वो अपूर्वकरण से लेकर आगे वो षट स्थान रूप से नहीं होते हैं, वो नीचे के अगर उल्टे क्रम से अगर हम जाएंगे। अरे वो प्रथम उपशम नहीं लेना है, अपूर्वकरण कौन सा लेना, क्षपक अपूर्वकरण लेना। ना ना ना, देखो देखो वो नीचे बात अलग है। वो षट स्थान है ना, वहां पर वो षट स्थान में से यथा योग्य वहां होगा, हो जाएगा वहां पर अनंत गुणा। कैसे हो जाएगी ऊपर से नीचे अगर हम गए तो अनंत गुणा ने मिथ्यात्व में चला गया। सम्यक तो से मिथ्यात्व की ओर देखना। देखो अभी हम यहां से पढ़ते, देखो उसके आगे के, ये हम कहां से उल्टे क्रम से जा रहे हैं ना, सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय से लेकर। द्विचरम कब होगा, सूक्ष्म सांप्राय के उपांत समय में। यानी सूक्ष्म सांप्राय का द्विचरम समय, वहां द्विचरम अनुभाग स्थान भी होगा। जघन्य बंध स्थान से द्वितीय बंध स्थान अनंत गुणा है, उससे तृतीय बंध स्थान अनंत गुणा। इस प्रकार अपूर्वकरण संयत तक ले जाना चाहिए, उल्टे क्रम से नीचे आना है। उसके आगे के अनुभाग बंध स्थान कहां तक, अभी उल्टे क्रम से उत्कृष्ट तक पहुंचना है, उत्कृष्ट अनुभाग स्थान तक छह प्रकार की वृद्धि से जाते हैं। जघन्य स्थान को छोड़कर शेष सब स्थानों में जघन्य वर्गणा व जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से, उत्कृष्ट वर्गणा व उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे है। और अभी जघन्य जो अंतिम समय वाला है वो छोड़ो। हाँ, क्या है, जघन्य वर्गणा व जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से, उत्कृष्ट वर्गणा व उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे है। गुणकार क्या है, गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा है। और स्पर्धकांतर विसदृश है। क्या कहा, अंतिम जघन्य स्थान में स्पर्धकांतर समान दिखाता, और यहां जो है सब स्पर्धकांतर विसदृश है नीचे। अभी तो हम देख के आए ना जघन्य में, क्योंकि छह प्रकार की वृद्धि द्वारा अनुभाग बंध की वृद्धि देखी जाती है। बंध में जो विसदृश जाते। हाँ, इसी प्रकार ये तो बंध के द्वारा उत्पन्न होने वाले स्थानों की चर्चा की। अब कहते इसी प्रकार से हत समुत्पत्तिक और हत हत समुत्पत्तिक स्थानों के भी अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा समाप्त हुई। उन्होंने वो हत समुत्पत्तिक स्थानों की ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं ली है, केवल उसमें भी ऐसा ही होगा, बस इतना ही बता दिया। देखो देखो, ये अल्पबहुत्व देख के आए ना हम, जघन्य से उत्कृष्ट कितना है। जघन्य अभी तो हम जघन्य स्थान को देख रहे थे, कहाँ से निकालो। ये बात जघन्य स्थान की बात यहाँ शुरू हुई थी ना, अंतिम स्वर्ग के अंतिम वर्गणा के 98 पर था। और ये जघन्य की बात कहाँ से ली थी मैं बताती हूँ आपको। पेज नंबर 91 जघन्य 199 के नीचे जघन्य अनुभाग बंध स्थान का आश्रय लेकर अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं। यानी पेज 91 से लेकर अभी तक जो हमने देखा ना, वो 111 तक, से जघन्य बंध स्थान की प्ररूपणा चली। वो तो जघन्य वर्ग जघन्य अनुभाग स्थान की बात चल रही थी, बंध की है। और उसमें वहाँ अनुभाग स्थान पर बंध द्वारा अनुभाग स्थान की बात है। परिणाम समान होने दो, परंतु अनुभाग का बंध अनंत गुणा घट रहा है कि नहीं है? हाँ, तो घटकर कहाँ से जघन्य होगा? दसवीं के अंत में। ख्याल में है ना? वह जघन्य स्थान में बताया था सर्वत्र अवस्थित संज्ञा वाली अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है वगैरह वगैरह, वहां बात हो गई थी। और वहां पहले से अंतिम की चर्चा कहाँ की थी? अंतिम को छोड़कर जो बताया ना, अंतिम स्थान तक जितनी अन्योन्य व्यस्त राशि है उतनी गुणा करना पड़ेगा उसको, डेढ़ गुणाने को। हाँ, नीचे के अलग अलग है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग बात है। षट्स्थान, हाँ षट्स्थान है। हाँ, यानी वो षट्स्थान के द्वारा जितने स्थान हो गए वो सब पॉसिबल है वहां पर। बंद के स्थान ब्लैक हो गया। ठीक है, अभी जो कुछ है। जरा एक मिनट, हम इसको जरा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। જરા એડજસ્ટ કરા વર્તી થે એક સેકન્ડ એક સેકન્ડ તે ખાલી ફિક્સ કરાય લાગતો એ ચાંદ ફિક્સ કરાય લાગતો એક સેકન્ડ ગો લાઈવ કરા ખાલી બસલે નહીં તે બરોબર જલ્દી સોડી દ્યા બંધ જ કરા ખાલસો તૂટલે તે તૂટન ગયેલે ને જાઉં દે તે તો 15 મિનિટ રહેલી સોડી દ્યા નહીં ઝાલા આજ કાંઈ એવડે ઠીક હે અભી હમ ઇસકે યે હો જાયેગા આપકે યહાં પર અભી નહીં હોગા વો ઠીક અભી હમ આગે બઢતે દેખો 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 ફિક્સ ફિર સે પઢતે ઇસકો 111 પર ફિર પઢતે યે પેરેગ્રાફ હમ ઇસી પ્રકાર દ્વિચરમાદિ અનુભાગ સ્થાનોં કા ભી કથન કરના ચાહીએ विशेष इतना है कि जघन्य बंध स्थान से द्वितीय बंध स्थान अनंत गुणा है, ये तो समझ में आई बात। उससे तृतीय बंध स्थान अनंत गुणा है, नीचे नीचे प्रति समय वाला जो बंध स्थान होगा वो अनंत गुणा होता है। इस प्रकार अपूर्व कर्ण संयत तक ले जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई बात? एक जीव हो या अनंत जीव हो, जब स्थान जब कहते हैं तो उसमें एक जीव नहीं बताते, नाना जीवों की अपेक्षा ये स्थान कहलाते हैं। टोटल स्थानों की चर्चा है, टोटल स्थानों की चर्चा है कि नहीं है, समझ में आते ना? तो उसमें भी यह अनंत गुणा का डिफरेंस होगा। उसके आगे के अनुभाग बंध स्थान, उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान तक 6 प्रकार की वृद्धि से जाते हैं। जैसे हम ज्ञान मार्गणा में जो पर्याय के समास के भेद देखते थे, वो एक जीव की अपेक्षा है कि अलग अलग जीवों की अपेक्षा, स्थान ही उसी को कहते हैं जो पॉसिबल है, उसको ही स्थान कहते हैं। तो इस तरह से वो 6 प्रकार की वृद्धि से जाते हैं। अब जघन्य स्थान को छोड़कर शेष सब स्थानों में जघन्य वर्गणा व जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से उत्कृष्ट वर्गणा व उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा है। वो है क्योंकि वहां पर भी जो जितनी अन्य अन्य भस्य राशि है उतने गुणा हो जाता है। पता नहीं है क्यों लिखा है, जो कुछ कहना चाहते होगे अभी वो आगे आएगी शायद, स्थान स्थान प्ररूपना भी आने वाली है। अनंत गुणा है, अनंत गुणा तो होता ही होता है, वहां पर भी होगा परंतु वो अनंत का प्रमाण कुछ अलग होगा। गुणकार क्या है? तो गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा है। अब वहां कितना गुणकार है उसकी उन्होंने बताया नहीं है, शायद आगे स्थान की बात में आएगी। अब कहते स्पर्धकांतर विसदृश है, ये बात यहाँ विसदृश क्यों है स्पर्धकों का अंतर? क्योंकि 6 प्रकार की वृद्धि द्वारा अनुभाग बंध की वृद्धि देखी जाती है और वहां अनंत गुणा की बात है ना। एक स्थान में तो कुछ, एक पर्टिकुलर स्थान में एक जैसा ही अंतर होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्थान में और जहां अनंत गुणी वृद्धि है, कहीं असंख्यात गुणी वृद्धि है, वहां अलग अलग अंतर होगा, ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार हत समुत्पत्तिक और हतहत समुत्पत्तिक स्थानों के भी अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा समाप्त हुई। अब उसमें भी कितने प्रश्न उठते हैं, परंतु अभी हम आगे के अगर उनका हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा ख्याल में आ जाएगा। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। ठाण परुवणदाये केवड़ियाणी ठाणानी असंख्येज्य लोगट ठाणानी एवड़ियाणी ठाणानी स्थान प्ररूपणता से। पहले अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, फिर वर्गणा स्पर्धक, उसकी बात उन्होंने बताई। अभी स्थान प्ररूपणा कर रहे हैं तो कितने स्थान होते हैं टोटल, तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, इतने स्थान है। कितने स्थान किसे कहते हैं, ये अपने जो प्रश्न है ना अभी स्थानों के बारे में। तो एक जीव में एक समय में जो कर्मानुभाग दिखता है उसे स्थान कहते हैं, एक पर्टिकुलर समय में। वह स्थान दो प्रकार का है, अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग सत्व स्थान। यानी बंध के द्वारा जो अनुभाग प्राप्त होता है उसको अनुभाग बंध स्थान कहेंगे, और वो घटकर जो तैयार होता है उसको सत्व स्थान कहेंगे। उनमें से जो बंध से उत्पन्न होता है वह बंध स्थान कहा जाता है, और पूर्वबद्ध अनुभाग का घात किए जाने पर जो बंध अनुभाग के सदृश होकर पड़ता है वह भी बंध स्थान है। क्या कहा, पहले अनुभाग बंध हुआ और उसका घात हुआ, और घात होकर अगर वो बंध के समान ही हो जाता है, क्योंकि घात होने पर उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज है ना, घात कितना हुआ, तो जो पहले जैसी वर्गणाएं थी वैसे जैसा स्पर्धक जैसा अगर घात होकर वैसे बन जाती तो उसको भी बंध स्थान ही कहेंगे, पर इन बिटवीन उसका अनुभाग हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हत समुत्पत्तिक स्थान कहेंगे, घात स्थान कहेंगे। तो कहते जो अनुभाग बंध के सदृश होकर पड़ता है वह भी बंध स्थान ही है, क्योंकि उसके सदृश अनुभाग बंध पाया जाता है। यानी जैसे जो षट स्थान वाले जो सारे स्थान बताए हैं तो घटकर भी जो उसके समान हो जाए तो उसको भी बंध स्थान कह देते हैं। घाता जाने वाला जो अनुभाग बंधानुभाग के सदृश नहीं होता, किंतु बंध सदृश अष्टांग और उर्वंक के मध्य में जो बंध के स्थान हुए थे, हमने देखा था ना ऊ चार वगैरह, और अंत में जो स्थान ऊ और आठ था, तो जो घटकर अंतिम ऊ और आठ इनके बीच में हो जाता है, तो कहते कि किंतु बंध सदृश अष्टांग और उर्वंक के मध्य में अधस्तन उर्वंक से अनंत गुणा और उपरिम अष्टांक से अनंत गुणा हीन होकर स्थित रहता है वह अनुभाग सत्कर्म स्थान है। उसको अनुभाग सत्कर्म स्थान कहेंगे, क्योंकि वो घात के द्वारा तैयार हुआ है। अनुभाग बंध स्थान और सत्कर्म स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं, यानी घात के द्वारा भी असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि हर उर्वंक और अष्टांग के बीच में कितने कितने स्थान बन जाएंगे। यहां अनुभाग बंध स्थान और सत्कर्म स्थान ऐसा कहने पर एक जीव में अवस्थित कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है वही स्थान होता है। वो हमने देखा था उस जीव के जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अनुभाग वाला परमाणु है उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या है उसी को स्थान कहा था, क्योंकि भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभागों की विवक्षित परमाणुओं में स्थित अनुभाग के साथ प्रवृत्ति न होने से बुद्धि से एकता को प्राप्त हुए उनकी एक स्थानता का विरोध है। यानी हर एक परमाणु में अपना अपना अनुभाग अलग अलग है, सबका मिलकर स्थान नहीं कहलाता है, जो मैक्सिमम जिसमें है उतना अनुभाग को हम स्थान कहेंगे। फिर शंकाकार पूछते, पहले भी ऐसी शंकाएं पूछी थी उन्होंने, यदि एक परमाणु में स्थान होता है तो उनमें अनंत वर्गणाओं और स्पर्धकों का अभाव होता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था ना, तो एक एक वर्गणा में इतने परमाणु होते हैं और उसमें इतनी वर्गणाएं होती हैं, अनंत होते हैं, ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं, तो उन सबका अभाव हो जाएगा। ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि नहीं, क्योंकि स्पर्धक और वर्गणा संज्ञा वाले सभी अनुभाग वहां ही पाए जाते हैं। यानी अनुभाग स्थान की ये विशेषता है, उसमें वो पर्टिकुलर मैक्सिमम अनुभाग को ही अनुभाग स्थान कह देते हैं, उसमें सारे वर्गणा स्पर्धक सभी उसमें पाए जाएंगे। शंकाकार पूछते अन्यत्र यह व्यवहार प्रसिद्ध नहीं है, या अन्यत्र तो ऐसा कहीं देखने में नहीं आता, अन्यत्र ये उसको योग स्थान की याद आती है, योग स्थान में तो सभी प्रदेशों का मिलकर योग कहलाता है। तो समाधान नहीं, क्योंकि स्थिति प्ररूपणा में अंतिम निषेक में एक परमाणु काल को ही ग्रहण कर उत्कृष्ट स्थिति की प्ररूपणा देखी जाती है। क्या कहना है, जब हम स्थिति कितनी बांधी या स्थिति के स्थान जब हम कहेंगे, तो मैक्सिमम जो हमने ज्ञानावरण में 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति देखी, तो 30 कोड़ाकोड़ी क्या है, तो उस समय जो समय प्रबद्ध बंधा है उसमें जो अंतिम निषेक की स्थिति है, तो अंतिम निषेक में सभी परमाणुओं की उतनी स्थिति है, तो एक परमाणु की भी उतनी स्थिति है, एक परमाणु की 30 कोड़ाकोड़ी सागर, तो अनंतों की मल्टीप्लाइड बाय 30 कोड़ाकोड़ी नहीं करते हैं। समझ में आई बात, जब हम निषेक की बात करते हैं तो अंतिम निषेक की जो स्थिति ऐसा कहेंगे, पर अंतिम निषेक में प्रत्येक परमाणु की वो स्थिति है। ऐसे भी यहां पर भी अंतिम वर्गणा के प्रत्येक परमाणु में इतना अनुभाग है, तो एक परमाणु के अनुभाग को ही यहां वो अनुभाग कहने, वहां सभी परमाणुओं की टोटल नहीं करना है, उसका अनुभागों की टोटल यहां नहीं करनी, ये कहना चाहते हैं। परमाणु काल संकलना सजाती व विजाती स्वरूप नहीं ग्रहण की जाती, क्योंकि वैसा होने पर काल की अनंतता का प्रसंग आता है। वो अनंतता का, अनंतता लिखना क्या कहना चाहते हैं, जैसे निषेक की, निषेक में जो हम काल की प्ररूपना की थी, तो एक परमाणु में जो काल था उसी को बताया था, अगर वहां सभी परमाणुओं का काल अलग अलग गिनेंगे तो काल अनंत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। यदि कहा जाए कि शेष प्ररूपना निष्फल है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि शेष प्ररूपना ने बस उसकी प्ररूपना करो ना, फिर वर्गणा स्पर्धक वगैरह सब निष्फल है, उसकी प्ररूपना क्यों करते हो, तो कहते क्योंकि विवक्षित अनुभाग परमाणु के साथ अविनाभाव रखने वाले अनुभाग की प्ररूपना द्वारा प्रकृति की ही प्ररूपना सफल है। यानी विवक्षित अनुभाग वाले जो परमाणु के साथ अविनाभाव रखने वाले जो ये उसकी प्ररूपना है, अभी जो हमने प्ररूपना देखी है वो सही है। बाकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो पूरा समझ कर पढ़ेंगे तो अच्छा। अनुभाग की बात, अनुभाग स्थान की बात चल रही, पहले भी वही देखा था, पहले वो पूरा हम जघन्य का देख रहे, अब अजघन्य में भी ऐसा ही है कह रहे, वहां तो अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपना थी, अब यहाँ स्थान प्ररूपना है, इसमें कितने स्थान होते हैं ये पूछा है, इसमें वो तो सारे कितने अनंत भाग वृद्धि वगैरह जो बात है उसकी बंद है, वहां एक स्थान की बात हमने देखी थी, एक स्थान में वर्गणा स्पर्धक वगैरह सब होते हैं, अब यहाँ हम देख रहे कि ऐसे कितने स्थान है, तो वो जघन्य वाला हमने देखा था दसवें के अंत में, और वहां से वो सारे अजघन्य स्थान उत्कृष्ट तक सब पाए जाते हैं, अब वो टोटल कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण है, उसकी चर्चा यहाँ चलेगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ मैं भाई।